कोशिश करते हैं। भारत की जो कोशिश है कि वो एनएससी का मेंबर बने और हाल ही में जिस तरह आपने बताया कि वो एमटीसीआर का मेंबर बना है, उसके पीछे जो मकसद नजर आता है बुनियादी तौर पे वो यही है कि वो जैसा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है कि वो खुल के इस टेक्नोलॉजी की तिजारत कर सके और कई ममालिक के साथ वो इसके हवाले से कुछ सौदे करने की कोशिश भी कर रहा है। तो वो इसके लेकिन सिर्फ माशी मकासद नहीं है, इन माशी मकासद के पीछे एक और ज्यादा बड़ा जो मुहर्रिक कार फरमा है वो इस की ये ख्वाहिश है कि इसके जरिए एक स्टेटस और लेजिटिमेसी हासिल की जाए जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन ना करने की वजह से एक मुश्किल खड़ी करती है भारत के लिए।
सही।
तो उससे उनको एक स्टेटस और क्रेडिबिलिटी हासिल हो जाएगी और वो खुल के इस टेक्नोलॉजी का ट्रेड बैन अल-अक़वामी सतह पे कर सकेगा। तो ये बुनियादी मकसद का फरमा नजर आता है इस कोशिश के।
लेट्स से कि इस ग्रुप में शमूलियत और एक रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल बिजनेस के बाद जैसे आप ये कह रहे हैं कि उनको थोड़ा एक लिवरेज या एडवांटेज मिल सकता है, तो क्या ये एज्यूम किया जा सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब एनएसजी का इजलास होगा या उसका समिट होगा तो उसमें भारत की एप्लीकेशन अगर रिव्यू होगी तो उसमें ज्यादा जान होगी और उसके ज्यादा इम्कान हैं कि उसको मंजूर कर लिया जाए?
जो भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शमूलियत के हवाले से इम्कान हैं उनका दारोमदार बहुत से अवामिल और मुहर्रिकात पे है। इनमें से एक ऑब्वियसली जिस तरह के आपने शुरू में कहा कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की हुकूमत मौजूदा खासतौर पर जो आखिरी चंद माह रह गए हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द इसकी रुकनियत दी जाए। लेकिन दूसरी जानिब आप जानते हैं कि अमरीका और चीन के दरमियान साउथ चाइना सी में कुछ तनाज़ात जन्म ले रहे हैं और कुछ एक तनाव नजर आता है। साथ ही साथ फिलीपीन के साथ और कई जो अमरीकी हलीफ ममालिक हैं उनके साथ भी एक तनाव की फजा उभरती हुई नजर आ रही है चीन के साथ। तो ये वो महरिकात हैं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान से कता नजर चीन के अपने कौमी सलामती के की जो तरजीहात हैं उसके पेश नज़र भारत की जानिब से जो ये कोशिश है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने उसको शायद वो बहुत हौसला अफजाई की नज़र से ना देखे। और मुझे ये लगता है कि अगले आने वाले जो चंद माह हैं और नई जो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन अगले साल आएगी उस वक्त तक जो हमें ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल या जियोस्ट्रेटेजिक वो इसके इम्कान को काफी हद तक कम कर देते हैं कि चीन और इसके कई और भी हलीफ ममालिक शायद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से शायद अमरीका की कोशिश है खास तौर पर कि वो भारत को एनर्जी का मेंबर बना सके उसकी मदद शायद ना करें।
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। प्रताप सोमवंशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। प्रताप साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप इस डेवलपमेंट का एनालिसिस कैसे करेंगे और सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने भी जो दो तीन नुकात खास तौर पे सामने रखे हैं उसके पस मंजर में आप भारत के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं आगे एनएसजी में भी और खासतौर पर अगर वो अभी एमटीसीआर में एक इम्पॉर्टेंट या रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल मेंबर की हैसियत से ट्रेड करता है तो क्या उसके बेनिफिट या लेवरेजेस हैं भारत के लिए?
अभी देखिए जिस तरह से बहुत ही बेहतर अच्छे से समझाया जो साथी हमारे पाकिस्तान से, तो सच ये है कि इससे डिफरेंट लेवल्स हो गए जिन चीजें हो गई। एक तो हो गया ये ठीक उसी वक्त आया जब एनएसडी का मामला चल रहा था, तो एक तो पहला काम तो ये हुआ कि जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में उसको एक बहुत ही बैक पड़ रहा था कि साहब ये चीज आपके हाथ से जा रही है, नहीं हो पा रही है, आपकी जो डिप्लोमेसी है वो गड़बड़ है और आप साहब इतना पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं और ये देखिए साहब, तो ये उनको कमेंट होता रहता था। तो उन्होंने दिखाया कि साहब चलिए ये नहीं हुआ तो ये हो गया, ये बहुत ऊपर ऊपर की बात थी। भीतर की बात ये है कि जैसे कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो कंट्री को ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है, कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो एनएसजी के लिए उससे दावेदारी बड़ी होती है, कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो उसकी क्रेडिट का भी सवाल होता है कि एक साख का सवाल होता है कि साहब देखिए ये जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं यहाँ पे हमारा ये रिकॉग्निशन है, और जैसा अभी कहा भी हमारे साथी ने कि जब एनर्जी का मसला होगा तो ये बेसिक तौर पे ये बात है कि अभी जो कंट्रीज खिलाफत में हैं उनको लग रहा है कि नहीं ये जो है इंडिया को मेंबर नहीं बनना चाहिए, उनके लिए एक जवाब होगा।
अच्छा ये बताइए प्रताप साहब, क्या ये भी इस बात के इम्कान आते हैं, क्योंकि अभी दो दिन पहले पाकिस्तान के एडवाइज़र ऑन फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज साहब, उन्होंने खास तौर पे जब क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि पाकिस्तान की सिफारती महाज पे या डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे ज़्यादा कामयाबियां नहीं हैं, तो उन्होंने इसको डिफेंड इस तरीके से किया था कि अगर भारत अभी एनएससी का रुकन नहीं बन सका है तो उसके पीछे पाकिस्तान की ही सफारतकारी कारफरमा है, और इसमें हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ख़तरा दार हकीकत यही है कि अगर भारत पहले एनएससी का रुकन बन जाता है तो वो कभी भी पाकिस्तान को एंडोर्स नहीं करेगा या पाकिस्तान को उस ग्रुप में नहीं आने देगा। क्या इस तरह की दरहकीकत जो दोनों मुल्कों के आपस के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या ख़ासतौर पर न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर उनकी जो एक मुकाबले की फिजा है, ये वो रुकावटें हैं जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मुखालफत में मजबूर कर रही हैं?
अब देखिए ये दोनों ऊपर ऊपर की कुछ बातें होती हैं, भीतर भीतर की कुछ बातें होती हैं। वही सरताज जी साहब का बयान पाकिस्तान के लिए होगा तो इस तरह से होगा, और अब जब वो इंटरनेशनल फोरम पे आए दूसरे के लिए बोलना होगा तो अलग होगा। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज ने पिछले दिनों बयान दिया, आपको याद होगा, पाकिस्तान के लिए कि साहब अगर पाकिस्तान अपनी मेरिट पे बनता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम किस बात के लिए पाकिस्तान को अपोज करेंगे, और हमारे अकेले से उसकी अगर मेरिट मैच करती है तो किस बात के लिए हम। तो उन्होंने जो जवाब भी दिया वो उन सारे मुल्कों का, चूंकि जाहिर तौर पर कोई पाकिस्तान अकेले मुखालफत में हो, पाकिस्तान अकेले कह रहा हो कि इंडिया को नहीं बनना चाहिए, ये जाहिर की आवाज पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी है, और खासतौर पर हिंदुस्तान में तो यही माना जाता है कि साहब पाकिस्तान इसको अपोज कर रहा है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अपने अपने पॉइंट से उनको लग रहा था कि इंडिया को मेंबर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं वो उसी के जरिए हल होंगी। तो ये जो एक मेंबरशिप है मिसाइल टेक्निक ग्रुप का, तो इंडिया में उसको जो पब्लिसिटी भी की गई, जो न्यूज में दिया गया, ये कहा गया कि साहब पाकिस्तान और चाइना दोनों इसके मेंबर नहीं है, देखिए हम हो गए,
सही।
तो वो एक कहीं ना कहीं इससे कोई मतलब नहीं होता कि चाइना इसका मेंबर है कि नहीं है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल की अलग चीज है, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें हम। लेकिन मुझे लगता है उनका बयान दो कंट्रीज के हवाले से कम और पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा था।
जी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, आपकी राय लेना चाहूंगा, पाकिस्तान के कंसर्न्स वाकईतन क्या थे एनएसजी में? अगर भारत की रुकनियत की दरख्वास्त थी, पाकिस्तान ने रिजिस्ट किया, पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या थे? क्या वाकईतन ये दुरुस्त है कि अगर भारत मेंबर हो तो फिर क्या उसके पास ऐसी कोई एब्सोल्यूट पावर्स आ जाती हैं जैसे वीटो पावर्स हैं कि वो बाद में आने वाले ममालिक की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकता है, इसके बावजूद कि हम देखते हैं कि अगर वहाँ चाइना जैसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं तो क्या चाइना रिजिस्ट नहीं कर सकता? किसी एक मुल्क की मुखालफत भी नए मेंबर बनाने में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है आपके ख्याल में?
देखिए पहले तो मैं जो हमारे दूसरे साथी ने बात की मैं उनसे अग्री करता हूँ कि दरअसल देखें इस वक्त ये जो पाकिस्तान और भारत दोनों चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मेंबर बने, और इसके पीछे दो तीन वजूहात हैं। नंबर एक तो ये कि चूंकि दोनों ममालिक ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की हुई है, तो जो ममालिक खासतौर पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट समझी जाती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक, यानी कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस, वो इसको बहुत हौसला अफजाई की नजर से नहीं देखते कि एक दो ऐसी रियासतें इसकी ग्रुप बन के मेंबर बन जाएं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं की, क्योंकि इससे फिर वो ट्रीटी शायद कमजोर हो जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों का मुश्तरका मफाद इसमें है कि वो चूंकि एक मुसलमा हकीकत है कि दोनों एटमी ताकतें हैं और एटमी टेक्नोलॉजी पर दस्तरस रखते हैं, और वो दोनों चाहते हैं कि अब दुनिया में उनका इस्तेहकाक और किरदार एक मुसलमा एटमी ताकत के तौर पे उभरे और दुनिया इसको तस्लीम करे, और वो बाकायदा तौर पर आईए की सेफगार्ड के अंदर रहते हुए इंटरनेशनली पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल भी कर सके और उसको शेयर भी कर सके।
अच्छा अली साहब ये बताइएगा, वैसे एनएसजी का क्राइटेरिया है क्या?
बात ये करना चाहूंगा कि जो कि इसमें दाखिली सियासत का भी अमल दखल है जिस तरह मेरे हमारे दूसरे साथी ने कहा, लेकिन मुझे लगता ये है कि वक्त गुजरने के साथ
दोनों ममालिक में ये एक दानिशमंदी की फजा उभरेगी कि हम दोनों को शायद मिलकर चलना चाहिए, हम हमारे सियासत और हमारी तारीख और हमारे जो तनाज़ात हैं वो अपनी जगह, लेकिन दोनों मुल्कों का मुश्तरका मफाद इसमें है कि वो मिलकर ये कोशिश करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले ये मेंबर बन जाएगा तो उसके पास भी वीटो पावर आ जाएगी, और अगर इंडिया बन जाएगा तो उसके पास भी वीटो पावर
आ जाएगी। आपको लगता है कि क्या कोई यूनिफाइड
और जो हालात हैं उसकी वजह से शायद दोनों मुल्क दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, तो बेहतर दानिशमंदी का तकाजा ये है कि दोनों मिल के, क्योंकि दोनों ने केस फाइल किया है इसमें, तो वो दोनों मिल के इसके मेंबर बने और बैन अल-अक़वामी जो बरादरी है वो भी दोनों को सपोर्ट करे।
एग्जैक्टली, और कहा भी ये गया है कि एक यूनिफाइड क्राइटेरिया होना चाहिए जो तमाम नए एप्लीकेंट्स पे एक तरह से असरअंदाज हो। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रताप सोमवंशी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन, चंद सेकंड की हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर मुजवजा साइबर क्राइम बिल, जिसके तहत मकसद ये है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इतना बाख्तियार बनाया जाए कि वो मुतनाज़ मवाद को ब्लॉक कर सके, लेकिन इसमें कुछ सवाल इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक भी हैं। एक ब्रेक के बाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम जहाँ में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन, और जैसे कि इस ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि इंटरनेट मवाद उसको सेंसर करने के लिए कुछ इख्तियारात तजवीज़ किए गए हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के लिए। ये साइबर क्राइम या इंटरनेट पे होने वाले जराइम उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत का एक मुजवजा कानून है जो सबमिट किया गया है पार्लियामान के ऐवान बाला। सेनेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जैली कमेटी ने बुध और जुमेरात को जो इजलास हुए उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल 2015 की ऑनलाइन मालूमात की निगरानी से मुतालिक शिक 34 पर बहस की थी, और इन इजलासों में शिरकत करने वाली सरगर्म कारकुन और गैर सरकारी तंजीम डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की बानी निगत दाद उन्होंने भी शिरकत की थी। मैं उनके कमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। उनका ये कहना था कि आईटी माहिरीन और सरगर्म कारकुनों को ये ख्याल है कि जो कानून तजवीज़ किया जा रहा है उसकी शिक 34 आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है जो इजहार राय की आज़ादी की जमानत देता है। दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि आईटी के माहरीन हों, इवन सिविल सोसाइटी के लोग हों, या इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हों, दोनों तरह की राय मौजूद पाई जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर दहशतगर्दी है, जहाँ पर ख़ासतौर पर लिटरेचर के ज़रिए नए जहनों को मुतासर करने की कोशिश की जाती है, और जहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए हमें एक जंग भी वहाँ पे नज़र आ रही है, लफ्ज़ों की ये जंग है, ख्यालात और नज़रियात की जंग है, और उसके अंदर शिद्दत भी है, क्या वाक़ेतन इसमें कोई ऐसा इदारा होना नहीं चाहिए जो बहुत इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो और इसको रेगुलेट करे? क्योंकि एक बड़ी थिन लाइन है इजहार राय की आज़ादी के साथ भी ये मामला जुड़ा हुआ है, तो होना क्या चाहिए? एनालिसिस हम लेंगे। हमारे साथ हैं दुर्दाना नजम साहिबा, बजाते खुद जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी ह्यूमन राइट्स इन इशू पर नज़र रखती हैं, और बजाते खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी उनकी इंगेजमेंट है। हम कोशिश करेंगे कि आसिफ महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करें, एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं और सोशल मीडिया इश्यूज पे काफ़ी बजाते खुद लिखते भी हैं। मैं एक हवाला यहाँ पे और देना चाहूँगा चौधरी निसार साहब का, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर और हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमा हैं, और उन्होंने भी दो दिन पहले काफ़ी वो खूब गिरजे बरसे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इसके बारे में कहे थे, और एक तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे हुकूमतों की सतह पे भी रिजेंटमेंट है। उनका ये कहना है कि एक अफरा तफरी है, और इसके अलावा डिस इन्फॉर्मेशन का सैलाब है और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है, और दर हकीकत दूसरों की इज्जतें या पगड़ियाँ भी महफूज नहीं हैं, ये उनके अल्फाज थे। तो सोशल मीडिया के ऊपर सवालात भी हैं, जहाँ पर उसको मौसर समझा जाता है वहाँ पे उसके सवालात भी उससे मुतालिक उठाए जाते हैं। दुर्दाना साहिबा, ये मैंने तफसीली एक इंट्रो आपके सामने बयानिया रखा है, इसमें मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये मुजवजा एक तो बिल है, दूसरी जानब इजहार राय की आज़ादियाँ हैं, इसमें तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए?
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और दो राय नहीं है कि जो इजहार राय है उसके साथ जिम्मेदारी का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और हमने ये अनफॉर्चुनेटली देखा है कि हमारे यहाँ इजहार राय को समझ लिया है कि मादर फिगर आजाद जो है ना आप राय रखना, और ये भी एक गलत ट्रेंड है, क्योंकि इसका भी जिम्मेदार मैं समझूंगी कि हुकूमत पर हम इस तरह लगा सकते हैं, हुकूमत को ठहरा सकते हैं कि उन्होंने जब ये इंफॉर्मेशन की जो एक लहर आई थी पाकिस्तान में, जब मीडिया को ओपन अप किया गया, तो उस वक्त चेक एंड बैलेंसेस बनाने चाहिए थे, जैसे बहुत सारे मुल्कों ने बनाए भी हैं। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो चाइना ने तो ये जो फेसबुक अभी मौजूदा फेसबुक है ये तो वहाँ चल भी नहीं सकता ना, उनके अपना ट्विटर की तरह का एक उनका है, एक सिस्टम है, इसी तरह फेसबुक का तरह का उन्होंने खुद बनाया होगा। उसकी क्या वजह है कि उनको पता है कि हमने सोसाइटी को रेगुलेट किस तरह से करना है, चलाना किस तरह से है। हर कौम, हर मुल्क जो है वो अपनी तरह चीज़ों को लेकर चलती है। असल में हम अमूमन वेस्टर्न सोसाइटीज को देखते हैं और उनको समझते हैं कि बस वही डेमोक्रेसी उसी को लेकर आकर पाकिस्तान पर लगा देंगे। हमारे यहाँ हम समझना चाहिए कि 71% लोग जो हैं वो अभी भी नाख्वांदा हैं, और जो और ऑफिशियल आप देखें तो 50-55% जो है वो तो ऑफिशियल है नाख्वांदगी लिटरेसी, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी आप जानते ही हैं कितना पढ़े लिखे होंगे, हमारा मैट्रिक या बीए या एमए है उसकी क्या लेवल होता है तालीम का, उनके हमारे यहाँ तालीम, तो ये चीज़ें देखने के है कि आया हमारी सोसाइटी तैयार थी या तैयार है इस यलगार के लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है। और फिर जाहिर सी बात है आप देखें कि देखें चौधरी निसार की बहुत सारी बातें ठीक नहीं भी होती, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो बिल्कुल इस बात पे वो भग बजाने गए कि ये एक लेकिन कसूर फिर मैं कहूँगी कि उन पर ही आता है, यहाँ जो जिसका जो दिल करता है वो एक बात कर देता है और वो डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है, और इन्फॉर्मेशन अगर है भी तो वो इतनी ज़्यादा है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रह गई बात ये आप साइबर क्राइम बिल की बात कर रहे हैं, ये इससे बहुत पहले भी बात हुई थी जब ये फ्लोट किया गया था, फिर ये रुक गया, इससे बहुत सारी बहसें हुई और ये पीटीए को जो है वो अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो बंद कर दें जो जिस इंटरनेट साइट को चाहें। तो देखिए ये एक ऑब्वियसली ये एक परेशान कुन बात तो है, क्योंकि आपने हम देखा कि यूट्यूब बिला वजह, अब हालांकि जिस फिल्म के ऊपर मतलब जो नामूस रिसालत के खिलाफ फिल्म थी जिसके ऊपर उसको बंद किया गया था वो आज भी है, बल्कि मुझे पता चला है कि वो एक नई वर्जन के साथ है। तो बजाय इसके कि हम चीजों को उस वक्त कंट्रोल करते उसके ऊपर एक बहस, असल में प्रॉब्लम पता है कि हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती,
ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ा जो है दुर्दाना एक और भी पहलू है जिसका जिक्र निगत दाद जिनका हम हवाला दे रहे हैं कि दरअसल वो रिप्रेजेंट भी कर रही थी और उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से बात भी की है कि बहुत सारी चीजें आपके दायरा कार में भी नहीं होंगी, इख्तियार में भी नहीं होंगी और कुछ चीजें टेक्निकली मुमकिन नहीं होंगी। ये बात तो समझ आती है कि अगर कोई वेबसाइट पाकिस्तान से लॉन्च हुई है और वहाँ पे कोई मुतनाज़े मवाद है तो वहाँ तो पाकिस्तान या पीटीए का अमल दखल हो सकता है, लेकिन बाकी जो बड़े वेबसाइट्स हैं या तो वो टोटली ब्लॉक करना पड़ेंगी, जैसे यूट्यूब की एग्जांपल हमारे सामने है और उसका एक नुकसान भी हुआ है, बड़ी रेजिस्टेंस भी थी और बड़ा एहतजाज भी था यूथ में खासतौर पर, या तो आपको बड़ा कोई एक अल्टीमेट और रेडिकल स्टेप्स लेना पड़ेंगे, आपकी टेक्निकल एबिलिटीज कितनी हैं और फिर ये कि कंटेंट को समझने के लिए आपकी इस्तेदाद-ए-कार क्या है, ये बड़े मुश्किल लगता है कि पहलू हैं। लेजिस्लेशन अगर हो भी जाएगी तो हुकूमत के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल या आसान होगा।
बिल्कुल ये बात सही है कि ये यही चीज़ों पर बात हो रही है कि किस हद तक जो है हुकूमत जाकर कौन कौन सी साइट को बंद करेगी, और अगर वो करेगी तो क्या मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ को तो वो दे हैव टू गेट इनटू एग्रीमेंट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो करते भी हैं तो ये तो देखना होगा कि जब ये इम्प्लीमेंट होता है ये लॉ पूरी तरह से तो इसकी क्या शक्ल निकलती है। अभी तो ये सिर्फ ख्याल सराइयां हैं इस तरह से जो है वो हुकूमत लेकर चलेगी, लेकिन ऑब्वियसली इट वुड बी अ लॉन्ग हॉल कि किस तरह से एक एक करके। अभी देखिए पाकिस्तान जो है दुनिया के उन मुल्कों ममालिक में से है जहाँ पोर्नोग्राफी बहुत सबसे ज्यादा देखी जाती है। अभी कितनी पोर्नोग्राफी की साइट्स को बंद कर चुके हैं, नहीं कर सकते, हर एक तक इनकी रसाई है ही नहीं। अगर ये बिल्कुल ही ब्लॉक, काफी चीजें इन्होंने ब्लॉक भी की है, लेकिन आई वुड अगेन से कि इट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट कि आप इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोक सकें विद द काइंड ऑफ सोशल एक्टिव सोशल मीडिया।
लेकिन आप क्या इस बात को एंडोर्स करेंगी कि कम एक दर हकीकत जो है जो भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग आ रहे हैं उनको एजुकेट करने का भी एक साथ साथ सोर्स होना चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी और आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं और बजाते खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ से भी गाए उन चीज़ों को उनकी तौसीक होनी चाहिए कि सोशल मीडिया इटसेल्फ कितना रिस्पॉन्सिबल चैनल है। और यहाँ बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो हवा में चलेगी, उसके असरात भी हैं और आपको जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। तो सोशल मीडिया यूज़र्स की तरबियत وہ کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے یہ بیڑا کون اٹھائے گا آپ کے خیال میں؟ پرائیویٹ سیکٹر
جی, اس کو تو آپ بنا دینا چاہیے, پارٹ آف کریکولم بھی بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر اس کو ابھی سے لینا شروع کریں اس کو سیریسلی, تو اٹ کڈ بیکم پارٹ آف کریکولم. اور جو مطلب پارٹ آف کریکولم ان دا سینس کے لیٹر اسٹیج پہ بھی, شروع میں بھی آپ بچوں کی تربیت بھی اس حوالے سے کر سکتے ہیں, اور لیٹر اسٹیج پہ جو یونیورسٹی لیول پہ بھی ہے جہاں جہاں آپ اس کو انڈکٹ کروا سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی اس کو اسٹرکچر بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو انسٹرکچر بھی کیا جا سکتا ہے. انسٹرکچر ان دا سینس کہ آپ کوئی کیمپین چلائیں, کیمپین دیکھیں, میڈیا اتنا بڑا ایک چینل ہے جس کے تھرو آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں, تھرو ڈفرینٹ پروگرامس کر سکتے ہیں, تھرو ڈفرینٹ مطلب کیمپین کے تھرو حکومت بھی کر سکتی ہے, پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ, اور بہت ساری جو لیولز ہیں ان سب کو انوالو کیا جا سکتا ہے. مطلب دیکھیں جس طرح سے مختلف بیماریوں کے لیے کرتے ہیں, جیسے ایڈس کے لیے, اب وہ دیکھیں نا ایک اسٹرکچر بھی کیمپین چلی تھی ایٹ ایوری لیول. ایون باہر تو بچوں کو بھی پڑھایا گیا اس طرح سے آپ نے سیکشوئل لائف کو اورینٹیشن اس کی کرنی ہے. وہ ہمارے یہاں اس قسم کی ڈیبیٹ نہیں چلتی, وہ الگ بات ہے, لیکن آئی تھنک دس از دی اونلی وے کہ آپ اس کو اسٹرکچر کر سکیں اور اس کو بتا سکیں کہ اس کی کیا کباہتیں ہیں اور اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے.
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا دردانہ نجم صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, ہم بریک لیے بغیر پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے, بڑا ایک کوئک آپ کے سامنے انالیسز یا تازہ ترین صورتحال رکھیں گے. بارشیں, ظاہر ہے بارشیں بڑی ضروری ہیں انسانی احیاء کے لیے بھی, ماحول کے لیے بھی, لیکن یہ اس وقت زحمت بن جاتی ہیں جب نکاسی یا آپ کا صحیح نظام موجود نہ ہو. انفارچونیٹلی کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی, جو پاکستان کی شہر خیال ہوتا ہے, بارشیں وہاں پہ کم ہوتی ہیں, اور جب ہوتی ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں, لیکن چند ہی لمحوں بعد ان کی یہ خوشی دکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ سڑکیں, گھر, حتیٰ کہ وہ زیر آب آ گئے اور زندگی جیم ہو کے رہ گئی ہے. ہمارے ساتھ ہیں شہزاد حسین کراچی سے, ہمارے کورسپونڈنٹ, ہمارے نمائندے, وہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں. شہزاد, اس وقت کیا صورتحال ہے اور سوسائٹی کی سطح پہ کس کو بلیم کیا جا رہا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو, انتظامیوں کو, انتظامیہ کو جو آج ہے یا اس سے پہلے رہی ہے, کون ذمہ دار ہے, اور اس کے بعد کوئی حل بھی بتا رہا ہے؟
جی جناب, ایک تو آپ نے جس طرح کہا بالکل صحیح ہے, جو کراچی والے ہیں وہ پہلے شکر ادا کرتے رہے, پھر شکایتیں کرتے رہے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت عرصے بعد دعاؤں کرتے رہے تو بارش ہوگی, لیکن ہوتا یہی ہے کہ بس بارش شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ بجلی چلی جاتی ہے. اس میں کے الیکٹرک کے ترجمان کی بھی بات سامنے رکھ دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ بارشیں برداشت کر سکے, اور بحالی کا کام ہو رہا ہے اور ان کے وقتاً فوقتاً یہ پیغامات آتے رہتے ہیں. لیکن جو ہمارے جاننے والے ہیں, مختلف اور صحافی ہیں, چینلز, آپ جہاں پر بھی دیکھیں تو وہ آتا رہتا ہے کہ اس علاقے سے بجلی چلی گئی, وہاں سے چلی گئی, وہاں گئی. ایک تو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے بجلی کا, دوسرا یہ کہ بارش تھوڑی سی ہوتی ہے, پانی جمع ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ٹریفک جام ہوتا ہے اسے گھنٹے لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں, جو کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. حالانکہ وہ جو کراچی میں ایک بیاری ایکسپریس وے ہے, اس کا نظام میں الٹی ڈائریکشن میں چلا کر بھی کچھ لوڈ کم کیا گیا ہے کہیں سے. میری بات ہوئی جو لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ہے, جام پال شورے صاحب اور ان کے جو اور ٹیم ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنے سینکڑوں جنریٹر لگائے ہوئے ہیں پانی کھیت میں, لیکن جو ریزلٹ زمین سے نظر آتا ہے وہ یہ کہ پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کے ہوتے ہی. وجوہات اس میں ایک تو نالوں کی بر وقت صفائی نہیں, جس میں پچھلوں سے لے کے اب جو لوگ ہیں ان سب پر ہی الزام لگایا جا رہا ہے, کیونکہ فنڈ بھی اناؤنس ہوتے ہیں. اب وہ ایک, اس میں اگر آپ بنیادی بات آپ کو بتاؤں, مردم شماری کا نہ ہونا, عوام کتنی ہے, کہاں کتنی رہ رہی ہے, بجٹ کتنا ہے, اس کو کیسے استعمال کریں, اس میں کچھ مسائل ہیں. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو گئے, لیکن میئر, ڈپٹی میئر, وہ ووٹ لے ہی نہیں پا رہے, تاریخ آتی ہے.
تو اس کی وجہ سے کیا سندھ حکومت پہ کوئی دباؤ ہے؟ ہم تو خود بلاول بھٹو زرداری, جو کہ نوجوان بھی ہیں اور حکمران جماعت کے سربراہ بھی ہیں, ان کا یہ جملہ بڑا سوشل میڈیا پہ مشہور ہوا کہ جی سندھ حکومت جواب دے, وہ خود بھی جواب مانگنے والوں میں کھڑے ہیں, حالانکہ لوگ تو شاید ان سے جواب لینا چاہتے ہیں. کوئی احساس ذمہ داری پایا جا رہا ہے اس وقت؟
جی, اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا جی, وہ اس روز صبح سے لے کے یعنی رات تک یہ جملہ ان کا ریپیٹ ہوتا رہا, اور اس میں ان کی پارٹی جو ان کو ڈیفینڈ بھی کرتی رہی کہ نہیں جی وہ ناراض نہیں ہے, جواب نہیں مانگیں گے, وہ صرف ہوم ڈپارٹمنٹ سے کرے تھے آج جواب دے. لیکن جی, جو آپ نے کہا سمجھ میں تو وہی آیا کہ ہر کوئی جواب ہی مانگ رہا ہے, جواب دے کوئی نہیں رہا. دوسرا یہ کہ جو نالے ہیں ان کو کور کرنا, صاف کرنا, پالیتھین تھیلیاں جو ان کا استعمال بند کرنا, یہ فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور امن درآمد اس کو نہیں ہوتا. जो आपने कहा इस पे बिल्कुल बात हो रही है कि इसका हल जो है वो तलाश किया जाए, इसमें नालों की दरवक सफाई कवर करना ताकि फिर इसमें।
बहुत शुक्रिया शहजाद, मुझे कट करना होगा और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में चलते हैं। प्रोग्राम इज़ जहां रंग और मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे दहशतगर्दी पे, टेररिज्म पे, खासतौर पे तुर्की में होने वाले इस्तांबुल के हवाई अड्डे पे खुदकुश हमले और उससे पहले फायरिंग के नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद की हलाकत और 200 से ज़ायद अफराद का ज़ख्मी होना। एक बहुत बड़ा ये वाक़ा है जो ख़ासतौर पर दाइश के साथ मंसूब किया जा रहा है, अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तरफ से ज़िम्मेदारी का दावा सामने नहीं आया है, लेकिन तुर्क हुकूमत का और उदारों का ख्याल यह है कि इसके पीछे दाइश है। हम जायज़ा लेंगे कि दाइश मशरक़ वस्ती में और बाकी दुनिया के ममालिक में किस तरह से ख़तरनाक एक अनसर के तौर पर सामने आ रही है और किस तरह के चैलेंजेस पैदा कर रही है। इससे पहले जो हमारे पिछले सेगमेंट्स में थे, हमारे जो रेडियो के सामीन हमारे साथ मौजूद थे, उसमें ने बात की है भारत की जानिब से अपना एडवांस मिसाइल सिस्टम या एडवांस मिसाइल्स जो हैं मिसाइल्स वो फरोख्त करने का मंसूबा वियतनाम को ये फरोख्त किया जाएंगे, जो कि ख्याल किया जा रहा है कि उसके लिए एक बड़ा जो इलीट ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसमें अगरचे उसकी बेडी उसकी दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकती है, लेकिन वो एक बड़े इलीट ग्रुप का हिस्सा बन सकता है और उसके जो मफादात हैं उसको वो प्रोजेक्ट करता है। प्रोग्राम का नेक्स्ट सेगमेंट हमने जायज़ा लिया जो मुजवजा क्राइम बिल है, जिसके तहत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो इंटरनेट के ऊपर मवाद को ब्लॉक कर सके, इसमें ज़्यादा उसको एम्पावर किया जा रहा है। इसके दोनों अतराफ पे हमने बात की है कि जिम्मेदारियां कहाँ पे हैं, इजहार राय की आज़ादी किस चीज़ का तकाजा करती है, और फिर कराची के अंदर बारिशें। तो आते हैं अब हम अपने आर ओ टी वी सेगमेंट में तुर्की के अंदर दहशतगर्दी के पस मंज़र में। हमने बात की है तुर्की के लिए चैलेंजेस क्या हैं, दाइश से कैसे निपटा जाए, और ये भी हमने सवालात उठाए हैं कि तुर्की जिसने हाल ही में अपने सिफारती ताल्लुकात बेहतर किए हैं रूस के साथ भी उसका तैयारा मार गिराने के बाद, और फिर इसराइल के साथ भी, तो क्या ये ताल्लुकात की बहाली भी रूस को तुर्की को मददगार हो सकती है दहशतगर्दी के खात्मे में। इस रेफरेंस में जो हमने किए हैं सब मेहमत चलिक, ये एडिटर हैं डेली सबा के, इस्तांबुल से शाया होने वाला ये अंग्रेजी का अखबार है, और इसके अलावा वो कमेंटेटर हैं मिडल ईस्ट और यूरोपीय यूनियन की पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। फारिबा नवा अफगानिस्तान बॉर्न जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, स्पीकर हैं और ऑथर हैं द ओपियम नेशन एक किताब की, उनसे हमने बात की है। पहले हम आपको उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यू सुनवाते हैं, साथ साथ हम आपके लिए उर्दू तर्जमा भी करते रहेंगे, और उसके बाद कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे किरण नाजेश, यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, फॉर्मली वो एसोसिएट रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ, और इसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी एट ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये भी खिदमात सर अंजाम देती रही हैं, और ज़ुबैर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ वो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता हैं। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले मेहमत चेलक से, एडिटर डेली सबा, उनसे हमने जो पहला सवाल किया था वो यही था कि पिछले एक साल के दौरान कम अज़ कम तीन बड़े हमले हुए हैं तुर्की के ऊपर, जिसमें 260 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं, और तुर्की की सिक्योरिटी के इम्कान ये हालिया जो लहर है तशद्दुद की वो किस तरह से वो तब्दील कर रही है, इसके इस सवाल पे महमत क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनका जवाब।
Well, first of all, I mean, we should realize that there are two failed states in the Turkey southern border, right? Iraq as well as Syria. And also, despite the secure borders, we also have about 3 million refugees in the country. Turkey's, has been able to accept all these refugees with, as you can imagine, checking every single one of them thoroughly and through security checks and background checks is not always possible. But what needs to be clear here that
वो ये कह रहे हैं कि हमें ये महसूस करना चाहिए कि तुर्की के जनूबी सरहद पर दो नाकाम रियासतें हैं, इराक और शाम। इन सरहदों के अलावा हमारे मुल्क में 30 लाख पनाहगुज़ी मौजूद हैं और हर एक पर नज़र रखना आसान काम नहीं है। इसके अलावा तुर्की वो उन गैर मुल्की जंगजुओं के लिए भी एक रास्ता है जो मगरबी मुल्कों से मशरकी मुल्कों में जाना चाहते हैं या फिर वो रूस से शाम में दाखिल होना चाहते हैं। बदकिस्मती से फौजी इस वक्त जो मगरबी इतिहादी हैं उनकी जानिब से तुर्की को मौसर तावन हासिल नहीं रहा है, खासतौर पर इंटेलिजेंस के शोबे में। दाइश इस वक्त पूरे खित्ते के लिए सबसे बड़ी तशवीश की बात है, तुर्की के लिए भी, मगरब के लिए भी। दाइश को ख़त्म कैसे किया जाए जब तुर्की के इतिहादी اقدامات کی طرف جو ہے وہ ٹھوس اقدامات کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جب شام کے صدر بشار الاسد کو تبدیل کرنے کی بات ہو، حالانکہ وہ داعش کی طاقت کے اس علاقے میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہیں۔ یہ تھا جواب محمد چیلک کا۔ ہم نے ان سے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ داعش کے خلاف کاروائی میں ترکی متذبذب رہا ہے یا ریلکٹنٹ رہا ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کو اس کا ایک سامنا ہے ایک بڑی افریت کے طور پہ، اور یہ کہ ترکی نے اور اتحادی اس کے ممالک نے داعش کے خطرات کو بھانپنے میں کیوں دیر کی؟ آئیے سنتے ہیں اس کا جواب، محمد چیلک کیا دیتے ہیں۔
That is not true, actually. Turkey has been, you know, Turkey has declared Daesh or ISIS, as you call it, as a terrorist groups from the beginning, since 2013 or earlier. You know, so Turkey has been doing what it can. However, those analysts that blame Turkey for not quickly acting on Daesh.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، ترکی نے داعش کو بہت پہلے سال 2013 میں ہی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ وہ تجزیہ کار جو ترکی کو فوری رد عمل نہ دکھانے کا الزام دیتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی پچھلے 30 برسوں سے اپنی سرحدوں کے اندر ایک طرح کی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ داعش گروپ جیسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنا اور سرحدوں کے قریب آیا، ترکی نے اقدامات کیے۔ داعش اور پی کے کے دو مختلف طرح کے دشمن ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ایپل اور اورنج کا موازنہ کریں، اور ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے اتحادی نے ترکی کے مخالف دڑوں وائی کے جی کو داعش کے خلاف جنگ میں معاونت فراہم کی، جس سے ترکی کو زیادہ خوشی نہیں ہے بلکہ ترکی کے لیے پریشانی کا یہ سبب بنا ہے۔ داعش، ہمارا جو اگلا سوال تھا ان سے کہ داعش سے نمٹا کیسا جائے، دوسری بات یہ کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ترکی کی فوج اور ترکی کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی استعداد کار کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، اس کا تجزیہ بیان کرتے ہیں محمد چیلک۔
Well, Turkey, you know, first of all, how to deal with Daesh, I think, you know, just to use it as a metaphor, if there is a wound on your arm and you put a band-aid on it, you're not necessarily healing the wound. You need to find the source of the wound so you're able to treat it. Instability in Syria and also the fact that neighboring Iraq is also a failed state at the moment is the source of the crisis.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک داعش سے نمٹنے کی بات ہے، آپ زخم کا علاج محض بینڈیج سے نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو زخم کے اسباب کا بھی پتہ چلانا پڑتا ہے۔ آپ کو داعش کے معاملے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس گروپ کے فروغ کا ذریعہ ترکی کی جنوبی سرحد پر دو ناکام ریاستیں شام اور عراق ہیں۔ اس گروپ سے کیسے نمٹا جائے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ صدر بشار الاسد کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا، کیونکہ وہ عدم استحکام کے لیے سیاسی خلا کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور اسی طرح عراق میں بھی حکومت فرقہ وارانہ پالیسیوں کے پیچھے ہے، لہٰذا عراق میں فرقہ واریت اور شام میں دہشت گردی کو حکومت قائم رکھنے کا ذریعہ وہاں پہ سمجھا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں میں مغربی اتحادیوں کو یہاں آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور صدر اسد کو جلد از جلد ایسے اعتدال پسند حکومتی سیٹ اپ کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیے جو شام کے لوگوں کی حقیقی نمائندہ اور ان کی حمایت رکھتے ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں ہوتا تو داعش کو ختم کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ یہ تھا محمد چیلک کا تجزیہ۔ ان سے اگلا جب ہم نے سوال کیا وہ یہ کہ ترکی نے ان دنوں روس اور اسرائیل کے ساتھ اپنے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنایا ہے، کیا یہ سفارتی کوشش ترکی کو دہشت گردی سے نمٹنے میں مدد دے سکتی ہے؟ اس کا جواب محمد چیلک کیا دیتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
مسٹر چیلک، اف دا نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ود رشیا اینڈ اسرائیل، دا ریسنٹ نارملائزیشن بائی انکرا، اٹ کڈ ہیلپ ترکی ان کربنگ ٹیررزم؟
I think it will definitely help, because at the moment, you know, if there were no normalization in the relations, particularly with Israel and Russia, there would be no diplomatic channels to deal with these attacks. I mean, deal with these sources of instability.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس میں ضرور مدد ملے گی، ان حالات میں اگر اسرائیل اور روس کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق نہ ہوں تو وہاں اس طرح کی عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے ذرائع موجود نہیں ہوں گے۔ اگرچہ شام کے بارے میں روس کا اپنا نقطہ نظر ہے، ترکی کی اپنی رائے ہے، لیکن دونوں ملکوں کے پاس اس معاملے پر سفارتی ذرائع سے بات کرنے کا موقع موجود ہے اور بات کرنی چاہیے، اور انکرا اور ماسکو کے تعلقات کا نارمل ہونا شام میں مددگار ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی فلسطینی علاقے غزہ میں بین الاقوامی امداد پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ترکی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی جو کہیں گے ترکی اس کی تعمیل کرے گا۔ اگلا سوال ہم نے جو محمد چلک سے کیا وہ یہ کہ ترکی میں اس وقت جو خراب ہوتی ہوئی امن کی صورتحال ہے، کیا اس کے سیاسی مضمرات ہیں صدر اردگان کے لیے اور حکومت کے لیے؟ اس کا جواب محمد چلک نے یوں دیا۔
This deteriorating security situation in Turkey, do you think there are some certain political consequences for Mr. Recep Tayyip Erdogan and current regime?
I don't think so. I mean, if anything, the fact that President Erdogan and his political regime is so strong and makes Turkey strong in an effective way, I think
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے برے سیاسی اثرات ہیں۔ صدر اردگان کی موجودہ سیاسی حکومت بہت مضبوط ہے اور انہوں نے مؤثر انداز میں ترکی کو مضبوط بنایا ہے، اور صدر اردگان قلیل مدتی مقاصد کے لیے اکیلے فیصلے نہیں کرتے، وہ طویل مدتی مقاصد کے لیے بہت ناپ تول کے فیصلے کیا کرتے ہیں جو ترکی اور ترکی کے عوام کے مفاد میں ہوں۔
Fariba, thank you so much for joining Voice of America. How do you see, what are the main reasons those are changing the security dynamics for Turkish state?
I think Turkey's government has been confronting ISIS.
Fariba Nawa, aap jo jin ka taaruf humne aap se pehle karaya, Afghan born journalist analyst, unse bhi humne is surat-e-haal pe baat ki aur unse bhi yahi sawal pehla kiya ki kya wajuhat hain jo Turkey ki security ke جو لینڈسکیپ ہے اس کو وہ متاثر کر رہی ہیں، تو اس کا فاریبا یوں جواب دے رہی تھیں۔ فاریبا کا پہل
اٹس ریونج ود آؤٹ ایڈمٹنگ اٹ اینڈ دیٹس واز انٹرسٹنگ ہیئر از وائی آرنٹ دے ایڈمٹنگ اٹ آن دی ادر ہینڈ مینی اف دی ادر اٹیکس ہیو بین فرام دی کردش سائیڈ اینڈ دی پی کے کے آف شوٹ برانچ کالڈ دی
یہ دو سوالات ہیں جو مکس ہو گئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ فاریبا پہلے سوال کا جواب یہ دے رہی تھی کہ ترکی کی حکومت ایک سال سے داعش کے خلاف محاذ پر ہے اور اپنی سرحدوں پر شام کے اندر جاری مشکل جنگ کے اثرات سے نمٹ رہی ہے۔ اس وقت یہ بالکل واضح ہے کہ ترکی داعش کی طرح سے مدد نہیں کر رہے اور داعش بھی انتقام پر تلی ہے۔ دوسری جانب کئی حملے ترکی پر ہوئے ہیں اور پی کے کے جنگ جو دھڑوں کی جانب سے یہ حملے کیے گئے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل نائٹ میئر ہے، یعنی جغرافیائی اور سیاسی اعتبار سے ڈرونا خواب ہے ترکی کے لیے۔ اگلا سوال جو ہم نے ان سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ترکی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے، داعش یا پی کے کے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دیگر تجزیہ کاروں کے ساتھ بھی میں نے اس پہ تبادلہ خیال کیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صدر اردگان کو تحمل سے اپنی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، انہیں پی کے ساتھ ایک بار پھر جنگ بندی پر کام کرنا چاہیے، اور یہ کہ اس طرح اندرونی مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ میرے خیال میں داعش بڑا خطرہ ہے اور داعش ترکی کے خلاف اشتعال میں ہے۔ وہ داعش کے خلاف مغربی ممالک میں شامل کیوں ہوا ہے، یہ ترکی سے وہ بدلہ یا انتقام لے رہا ہے، یہ خیالات تھے فاریبا نوا کے۔ ہم نے ان سے جو اگلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ ترکی کی اہلیہ تگین، ترکی کی ملٹری کی فورسی اور دیگر انسٹیٹیوشنز کی، کہ وہ دہشت گردی سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، تو فاریبا نے کیا کہا؟
This is a good question that I was discussing with another analyst today, and I think that if Erdogan sits down and the AKP, the Turkish government, sit down and go back to their ceasefire with the PKK, it could
جی وہی بات وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ ترک حکومت کے لیے بہتر یہی کہ وہ مل بیٹھیں اور بیٹھ کے سیاسی حل نکالیں پی کے ساتھ اور پھر فوکس کریں صرف اور صرف داعش کے اوپر۔ اس سوال کا جواب وہ کیا دیتی ہیں ترکی کی اہلیت کا، ترکی کی ملٹری فورس کا، آئیے سنتے ہیں۔
I think what I'm seeing from the Turkish military, it's incredibly fast. They just arrested, they were able to name the countries of the
وہ کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ترکی کی فوج نے غیر معمولی طور پر بہت تیزی سے اپنا رد عمل ظاہر کیا، جس طرح حملہ آوروں کے بنیادی ممالک کے نام بتائے گئے، کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور ایئرپورٹس کو بھی جس تیزی کے ساتھ بحال کر دیا گیا وہ بہت متاثر کن ہے۔ لیکن خودکش بمباروں سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا، پاکستان، افغانستان، شام، ان سب ملکوں کو خودکش بمباروں سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ جنگ اب شہروں میں داخل ہو چکی ہے اور دہشت گرد کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کیا جائے، لہٰذا بات صرف ان لوگوں تک پہنچنے کی نہیں بلکہ ان حملوں کے نتائج پر بھی نظر رکھنے کی ہے۔ جب نتائج کی بات ہوئی ہم نے یہ بھی ان سے سوال کیا کہ ترکی اور روس کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, ترکی نے اسرائیل کے ساتھ بھی اپنی سفارتی تعلقات بحال کی ہیں, یہ کتنے مددگار ہوں گے ترکی کے لیے؟ اس کا جواب وہ کیا دیتی ہیں؟
I think it's going to help its economy. I'm not sure if it's going to help in curbing terrorism, because again, these Daesh, if Daesh is absolutely,
unka ye kehna hai ki isse Turki ko apni maishat mein to madad mil sakti hai, dehshatgardi ke khatme mein koi zyada madad nahi mil sakti. Daesh is hamle ki zimmedar hai aur bahut sare log yahi bata rahe hain ki Daesh ne hamle kiye hain, agarche Daesh ye keh sakti hai کہ وہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ چونکہ روس اور اسرائیل کے ساتھ بحال ہوئے ہیں, روس اور اسرائیل داعش کے مخالف ہیں, تو اس لیے یہ حملے کیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, دو دن میں ان حملوں کی تیاری نہیں کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا گفتگو فاریبا نوا کے ساتھ. ہم نے ان کے ساتھ اور بھی سوال کیا تھا, چونکہ آپ بنیادی طور پر افغانستان سے ہیں, داعش سے, داعش کے لیے افغانستان اور پاکستان جیسے علاقے کتنے اٹریکٹیو ہیں, وہاں پہ اس کے لیے کیا امکانات ہیں, پاکستان اور افغانستان کی فوج حکومتیں اس کی مخالف ہوں, یہاں تک کہ طالبان بھی اگر ان کو قبول نہ کر رہے ہوں, برداشت نہ کر رہے ہوں, تو داعش کیا واقعتا وہاں پہ پھیل سکتی ہے؟ تو فاریبا کیا کہتی ہیں؟
I think they're flourishing everywhere and that's the reality of it and it's not necessarily their people.
میرے خیال میں داعش ہر جگہ پھیل رہی ہے, حقیقت ہے, اور یہ بھی کہ وہ لوگ داعش کے ساتھ جو کسی تنظیمی گروپ کے ساتھ ہیں, ضروری نہیں کہ وہی داعش کے ساتھ ہوں, وہ نوجوان جو الگ تھلگ یا تنہائی کا شکار ہیں, ان کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے, بھلے وہ بیلجیم کے جنگجو ہوں, بیلجیم کا دہشت گرد حملہ ہو, یا اورلینڈو میں دہشت گرد حملہ. اورلینڈو میں افغان امریکن شہری حملہ آور تھا جس کا داعش سے رابطہ نہیں تھا, لیکن پولیس کے مطابق اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ داعش کی رکنیت رکھتا ہے. یہ ڈراؤنا پہلو ہے, داعش ہر جگہ پھیل رہی ہے اور اب ہر جگہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے, اور اس کے بھرتی کرنے والے بھی موجود ہیں ہر جگہ, یہاں پہ سینٹرل ایشیا تک وہ اس کی رسائی ہے. استنبول حملوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ حملہ آوروں کا تعلق روس, ازبکستان اور کرغزستان سے بتایا گیا ہے. آخری سوال جو ہم نے ان سے کیا, ہمارے باقی پینلسٹ بھی موجود ہیں سن رہے ہوں گے, افغانستان میں گزشتہ روز بھی آپ کو سامعین معلوم ہے حملہ کیا گیا, 40 پولیس اہلکار اس میں ہلاک ہوئے, اور وہاں کہ جو حالات ہیں وہ ترکی کے حالات سے کس حد تک مماثلت رکھتے ہیں داعش کی موجودگی کے اعتبار سے, اور سیکنڈلی یہ کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اس پہ ان کا جواب سنتے ہیں.
It's a very complicated question. I obviously have my opinion on what is happening in Afghanistan.
وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے, افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں وہاں موجود رہی ہوں, وہاں سے رپورٹنگ کی ہے, ترکی کسی حد تک وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا جو پاکستان نے افغانستان میں کیا, کیونکہ یہ چیزیں پلٹ کر واپس آتی ہیں, جب آپ حملہ آور گروپوں کی مدد کرتی ہیں تو نشانہ آپ بھی بنتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کو بہترین کام کر سکتا ہے وہ ہے مذاکرات کی میز پر آنا اور لے کر آنا طالبان کو, اسے طالبان اور داعش سے چھٹکارے کے لیے پوری طرح ایماندار ہونا چاہیے اور کابل حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے. یہ تھی فاریبا نوا, افغان بورن جرنلسٹ, اینالسٹ, ان سے ہم نے انٹرویو کیا ترکی کی صورتحال پہ اور ساتھ ساتھ داعش کا جو بڑھتا ہوا فینومینا ہے پوری دنیا میں اس پہ بات کی. اب ہم انالیسز لیں گے, لائیو انالیسز کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرن نازش, یو ایس بیسڈ جرنلسٹ, رائٹر, فارمر رپورٹر ایٹ نیو یارک ٹائمز, اور اس کے علاوہ فارملی ایسوسیٹڈ وزٹنگ فیکلٹی ایٹ او پی جندل گلوبل یونیورسٹی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, واشنگٹن بیسڈ سینئر اینالسٹ ہیں, ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ ایشوز, اور داعش کے فینومینا پہ ہم بات کریں گے, اگین ترکی میں بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی. نازش بہت شکریہ آپ کا, آپ کی ایک کتاب بھی آنے والی ہے جس میں خاص طور پہ آپ ٹیررزم کو, ملیٹنسی کو, اسلامک اسٹیٹ کو آپ نے فوکس کیا ہے. آپ کا انالیسس کیا ہے, یہ جب سے فینومینا سامنے آیا ہے داعش, اس کے باوجود کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف انٹرنیشنل الائنسز بھی ہیں, بڑے بڑے گروپ, بڑے بڑے ممالک اس کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, لیکن داعش آپ کو بڑھتی ہوئی, پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا سکڑتی ہوئی؟
Thank you for having me. First of all, definitely phailti hui nazar aa rahi hai. Jaise I think Fariba ne bhi kaha ke ISIS is flourishing because unki strategy thodi different hai. Lekin kyunki recently Turkey ka attack hua tha aur abhi aap hum log Turkey ki baat bhi kar rahe hain. I do want to say that Turkey se maine kafi report kiya hai, abhi main agle hafte dobara ja rahi hu current situation dekhne ke liye. لیکن ٹرکی کا جو ٹرکی پلیز اے ہیوج رول ان آئسس, یو نو, ان ٹرمز آف کوآرڈینیٹنگ. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آئی تھنک جو ابھی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بارڈر ٹرکی کا جو بارڈر ہے वो उसकी वजह से बॉर्डर फ्लो की वजह से, क्योंकि आइसिस हमेशा से 2014 से, लाइक 2014 जब सीरिया में और इराक के बॉर्डर में आइसिस प्रोग्रेस कर रहा था और टर्की के बॉर्डर तक पहुंच रहा था, उस वक्त तक शुरू उधर से 2014 आई थिंक अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त में जब यू नो आइसिस का फ्लो बहुत ही फ्रीक्वेंट था, अगर फाइटर्स इंजर्ड हो जाते थे तो आते थे, और अभी भी यही है किलिस और बॉर्डर टाउन्स के अंदर गाजियान्तेप वगैरह में आइसिस का जो फ्लो है वो अभी भी लोकल्स यही बोलते हैं कि नज़र आता है, और अगर जो रिपोर्टर्स लोकल रिपोर्टर्स जाके वहाँ काम करते हैं उनको भी प्रोमिनेंटली नज़र आता है कि आइसिस की प्रेजेंस टर्की में कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि टर्की एक्चुअली एड्रेस करना चाह रहा है इशू को. मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि टर्की जो है आइसिस को इतना ज्यादा, मतलब आइसिस को टेररिस्ट ग्रुप नहीं कहता या इस तरह की चीजें जो कुछ लोकल मीडिया बोलते हैं, लेकिन इनफैक्ट टर्की हैज टेकन अ स्टैंड एंड
हमें और भी, जैसे शायद आप नहीं सुन पाई होंगी, इससे पहले हमारे साथ मेहमत चेलक भी थे, उनका ये कहना था कि 2013 में ही दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर किया, लेकिन एक पॉइंट जो उठाया उस पर मैं आपकी भी राय चाहूंगा और जुबैर इकबाल साहब की भी, वो ये कहते हैं कि दो फेल्ड स्टेट्स उनके बकौल बॉर्डर्स के, सदर्न बॉर्डर्स के ऊपर दो फेल्ड स्टेट हैं, शाम और इराक, जब तक वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर काम नहीं करते, तुर्की को भी चैलेंज रहेगा, वेस्टर्न अलाइज को भी चैलेंज रहेगा और पूरी दुनिया को भी दाइश का चैलेंज रहेगा, और ये कई साल तक ये फेनोमेना कायम रहेगा और इससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा. क्या ये एनालिसिस दुरुस्त है?
जी, I mean, I guess, right? I mean, एक चीज आपके पास है तो ठीक है, आपके you know, proximity में जाहिर सी बात है उसका चैलेंज तो होगा, लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है ना कि जो मुल्क उसको एड्रेस, अगर टर्की टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो उसको एड्रेस करना चाहता है तो क्या कर रहे हैं, इसका फर्क पड़ता है. क्योंकि टर्की के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले 2 सालों में आपने देखा है कि प्रॉब्लम आइसिस का होता है, टेररिज्म आइसिस का, आइसिस अटैक्स हो रहे हैं हर जगह पे, पीकेके अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन टर्की ने शुरू से इसको पीकेके का मसला बनाया, जो कर्डिश यू नो आपको पता है कि टर्की हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिविल वॉर विद द कर्ड्स, एंड उसकी वजह से कर्डिश इशू भी इंटेंसिफाई इसीलिए हुआ क्योंकि टर्की ने उसको टेररिस्ट इशू बना के उन इसको बहाना बना के यू नो कर्ड्स के साथ उन्होंने
और दूसरी तरफ तुर्की भी ये ब्लेम करता है इवन वेस्टर्न अलाइज को कि उन कर्ड्स के अंदर जो ग्रुप्स थे, चूंकि वेस्टर्न अलाइज उनको भी अगेंस्ट दाइश इस्तेमाल करना चाह रहे थे या उनको उनके सामने लाना चाह रहे थे, तो तुर्की वहां पे भी अनकंफर्टेबल था. जुबैर इकबाल साहब, आपका एनालिसिस इस इशू पे, तुर्की के चैलेंजेस कुर्द भी हैं, अब दाइश का फिनोमेना भी है, कुर्दों के साथ दोहरा इसलिए कि वेस्टर्न अलाइज जो है जो तुर्की को दाइश के खिलाफ सपोर्ट करते हैं वो उनको भी सपोर्ट करते हैं, तुर्की के लिए क्या सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं और कैसे उसकी लैंडस्केप तब्दील हो रही है सिक्योरिटी के पसमंजर में?
देखिए, जो पहले अभी तक कहा गया है दुरुस्त है कि जो जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, तुर्की के लिए मुश्किल ये है कि अगर इराक और सीरिया में पोलिटिकल सेटलमेंट नहीं होती तो इस किस्म की इंस्टेबिलिटी रहेगी, और खासतौर पर याद रहे कि दाइश आईएसआईएस जो है उसकी एक पोलिटिकल फाउंडेशन है, और अगर उस पोलिटिकल इशू को सॉल्व नहीं किया गया तो वो खत्म नहीं होगी. दूसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, तुर्की इस वक्त पर 2 फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकता. उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आईएसआईएस के साथ भी लड़े और कुर्दों के साथ भी लड़े. ऐसी कंडीशन में बैलेंसिंग जरूरी हो जाती है. ऐसी कंडीशन में यकीनन जरूरी हो जाता है कि वेस्टर्न एलाइज जो हैं वो पहचाने कि तुर्की की क्या लिमिटेशंस हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, वरना वही मामला आ जाएगा जैसे पाकिस्तान के होता रहा है कि पाकिस्तान को हमेशा कहा जाता था कि डू मोर. तो बात यह आ जाती है कि क्या उस मुल्क में इतनी अहमियत है, उसमें इतनी सलाहियत और काबिलियत है और इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो इस करने के काबिल हो. तुर्की अभी ये करने के काबिल नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोर्स या प्रेशर डालना गलत काम होगा. और ये जो कुछ आईएसआईएस का जो अटैक हुआ है, इसका मैसेज क्लियरली यही था कि अगर आपने हमारे खिलाफ दोबारा हथियार उठाए तो फिर इस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसको देखना बहुत जरूरी.
अब क्या रहते हैं स्टेट लेवल पे, आपके ख्याल में तुर्की कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? मजीद अग्रेसिव होगा अगेंस्ट दाइश या फिर वो नापतोल करेगा? जैसे एक सजेशन ये भी है उनके लिए कि पहले वो पीकेके, चूंकि वो एक इंटरनल इशू है तो उसको पोलिटिकली सॉल्व किया जाए. तुर्की की हिकमत अमली क्या होगी, क्या हो सकती है?
देखिए, जहां तक पीकेके का मामला है उसके साथ सलूशन इसलिए नहीं हो सकता कि एक्सटर्नली पोजीशन बहुत वीक हो गई है. तो इसलिए वो अब इंटरनल मामला नहीं रहा, वो एक रीजनल मामला बन गया है। तो रीजनल मामले को सॉल्व करने के लिए जरूरी होगा कि दूसरे ममालिक अपने इश्यूज और अपने इंटरेस्ट को कम्प्रोमाइज करें। अगर वो नहीं करते तो फिर तुर्की वही करता रहेगा जो अब तक करता रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई सोल्यूशन बाकी नहीं। दोनों तरफ लड़ाइयां करता रहेगा और दोनों की तरफ वो टेंशन बढ़ती जाएगी, जिस वजह से डोमेस्टिकली तुर्की के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलती चली जाएगी, जो एक बड़ी खतरनाक सी बात है, क्योंकि तुर्की एक बड़ा मुल्क है और उसके असरात यूरोप पे भी होंगे और मिडल ईस्ट पे भी होंगे।
किरण, आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब बात करते हैं इस्लामिक स्टेट या दाइश की, तो उसके खतरात सिर्फ मशरिक वस्ता के लिए नहीं है, यूरोप के लिए भी है, हत्ता कि अमरीका तक में भी उसके खतरात महसूस किए जा रहे हैं। जॉन ब्रैनन ने दो दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया और उनका ये ख्याल था, वार्न किया उन्होंने कि अमरीका में भी इसी नौयत के हमले हो सकते हैं, तो उससे ये अंदाजा हो सकता है कि उसकी आउटरीच कहाँ तक है। और सबसे खतरनाक उसका उसके पास जो कहना चाहिए कि वेपन है, वो ये बताते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के, जरूरी नहीं कि दाइश के लोग जाके किसी को कंटेमिनेट करें, वो लोग जो इल्यूजन रहें या वो लोग जो तन्हाई का शिकार हैं, वो बजाते खुद उसके पास खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उसके लिटरेचर तक उनकी रसाई है। ये जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं दाइश के, इसके लिए क्या करना होगा? फिर इस पर्सपेक्टिव में मैं खासतौर पर दूसरे रीजन में भी जाना चाहूँगा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान खासतौर पर, और फिर हम भारत से भी दाइश की आवाज़ें सुनते हैं, तो उस रीजन में क्या करना होगा? उसकी कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं तुर्की के हालात के साथ?
I think that's a very interesting and important question. क्योंकि इसी ये एक चीज है जो लोन वुल्फ का जो फिनोमेना नया सामने आया है आइसिस के बाद, वो ये ऐसी चीज है कि सोशल मीडिया के थ्रू और आइसिस ने जिस तरह से अपने टेंटिकल्स पूरे दुनिया में बिछाए हैं, वो ये जो है इसको आइसिस को डिस्टिंक्ट करता है दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ। और ये आई मीन इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज इन फैक्ट हैपनिंग। इसका तरीका मतलब ये उसी बेसिक्स पे आ जाता है ना, कि आप जितने भी केसेस सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी FBI के इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बहुत सारे लाइक देयर थाउजेंड्स ऑफ केसेस जिन लोगों को जिनको जो है सर्वेल किया जा रहा है सस्पेक्ट की बिना पर, ये सारे केसेस जो हैं मतलब सारे केसेस में एक चीज कॉमन होती है, वो ये है कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है, या यू नो इट्स द आइडिया ऑफ लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड, यू नो।
लेकिन ये इश्यूज ऑफ वेस्ट के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उस रीजन के अंदर ज्यादातर वो लोग उसके साथ जा रहे हैं जो किसी मुनज्जम ग्रुप का हिस्सा है, ऑर्गेनाइज ग्रुप का हिस्सा है।
जी बिल्कुल, मतलब इस तरह तो मतलब काफी ऐसे जगह कम्युनिटीज वगैरह हैं सारे मुल्कों के अंदर, चाहे वो साउथ एशिया हो, मिडल ईस्ट हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो मतलब देयर इज अ नेटवर्क जो ऐसे लोगों को देख रही होती हैं, और मतलब कुछ न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में भी यू नो कुछ ऐसी चीजें सामने आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन जिनके ऊपर हो रही है। तो वो तो है, वो तो नेटवर्क है, लेकिन आप उसको किस तरीके से डील करेंगे? मतलब आई थिंक देयर इज अ ह्यूज फ्लॉ इन the way it is also addressed, like log kyun is taraf jate hain, kyun kisi cheez ke liye kyun is tarah jihad ki taraf jate hain, kyun is tarah ke ideas ko samajhte hain, jab agar aap dekhen agar detail mein jaye to jo cheeze ye sikha rahe hote hain in communities ke andar, main kafi jagah ja chuki hu aur unme bahut sari discrepancies hoti hain, islamic jurisprudence aur islamic teachings se kafi dur hoti hain, kafi extreme hoti hain, to aisa kyun ho raha hai? I think uski basis to social sciences mein hai, you know, ke kis tarike se aap logon ko apni community mein unko secure feel kar
aur fir engage karna aur solution bhi wahin pe, social justice bhi. Zubair Iqbal sahab, quickly, hamare paas ab 1 minute hai, instant solutions kya hain daesh ko globally is phenomena ko deal karne ke liye, isko curb karne ke liye?
मुश्किल ये है कि हम 2 साल बहुत लेट हो चुके हैं
जी।
ये आज से 2 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम जिनकी बेसिस पर ISIS डेवलप हुई, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, नंबर 1 तो बात यह है। नंबर 2 बात यह है कि हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम की मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता। हमने ये कोशिश की है कि हर प्रॉब्लम को मिलिटरली सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को और बुमरैंग कर दिया है। इसलिए जरूरी ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रिकग्नाइज करें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्या हैं। अगर हम उनको सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फलूजा अब उसको आजाद कर लिया गया है, लेकिन वहां पर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, उसके मुताबिक सोचा भी नहीं गया। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस किस्म की प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल इश्यूज को ज्यादा अहमियत दें,
पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकली हल करें और सोशल जस्टिस पे खासतौर पर फोकस करें, इंगेज करें नौजवानों को। बहुत शुक्रिया आपका जुबैर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, किरण नाजिश आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सामिन इसके साथ ही हमारा आज का यह प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असद हसन को और हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।